arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर कंचन।
धार्मिक जागृति के कारण। उपनिषद काल में धार्मिक क्रांति के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया। धार्मिक क्रांति के बीज ब्राह्मणों यानी जो ब्राह्मणों ग्रंथ है उसमें ही विद्यमान थे। आरण्यक मनीषियों ने अपने आत्मचिंतन से उन बीजों को अंकुरित किया। कालांतर में उपनिषद काल की महनीय तत्व जिज्ञासा ने तो उन अंकुरों को पल्लवित करना भी प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार धार्मिक सुधार की लहर तो उपनिषद काल में ही दौड़ चली थी। धार्मिक क्रांति का केंद्र मगध था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति के कारण इस प्रकार थे। पहला, धर्म की जटिलता। अपने प्रारंभिक स्वरूप में ऋग्वैदिक काल में वैदिक धर्म सरल था, लेकिन कालांतर में कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे। संस्कृत जन सामान्य की भाषा न होने के कारण मंत्रों को समझना मुश्किल हो गया था। धर्म उनके लिए भार बन गया था, जिसे वे ब्राह्मणों की सहायता के बिना समझ नहीं सकते थे। बाह्य आडंबर बढ़ते बढ़ते जा रहे थे। परिणामतः धर्म संबंधी कार्यों पर ब्राह्मण वर्ग का ही प्रभाव स्थापित हो गया था। दूसरा, बहुदेववाद। सृष्टि के सभी महत्वपूर्ण तत्वों का मानवीयकरण करने से बहुत सारे देवी देवताओं की स्थापना हो चुकी थी, जैसे स्वर्ग के देवता सूर्य, सावित्री, उषा, विष्णु, शिव, पार्वती, ब्रह्मा, वायुमंडल के देवता इंद्र, मरुत, वायु, रुद्र, पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि। इन देवी देवताओं की उपासना करना अनिवार्य था और प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा करने के अलग अलग विधि विधान थे। तीसरा, खर्चीले और कठिन यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में कोई भी व्यक्ति सरलता से यज्ञ कार्य को स्वयं संपन्न करता था, लेकिन धीरे धीरे यज्ञ कार्य बहुत जटिल हो गए थे। यज्ञ हवन करने के लिए एक साथ कई पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी। कई यज्ञ तो 12-12 वर्षों तक चलते थे। यज्ञ के लिए बहुमूल्य सामग्री क्रय करनी पड़ती थी। इस प्रकार यज्ञ इतने खर्चीले हो गए थे कि जन साधारण की पहुंच से बाहर थे। चौथा, नवीन कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रारंभ। लोहे का उपयोग 600 ईस्वी पूर्व के लगभग प्रारंभ हो गया था, जिससे निर्मित लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि निर्मित की गई। खेती के लिए लोहे के फल वाले हलों का उपयोग होने लगा, जिनमें बैलों का उपयोग किया जाता था। परंतु वैदिक परंपराओं के यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी, जिससे पशुधन निरंतर कम होता जा रहा था। मांसाहारी लोग भी पशुओं का वध करते थे। रामशरण शर्मा के शब्दों में, वैदिक प्रथा के अनुसार यज्ञों में पशु अंधाधुंध मारे जाने लगे। यह खेती की प्रगति में बाधक सिद्ध हुए। असंख्य यज्ञों में बछड़ों और सांडों के लगातार मारे जाते रहने से पशुधन क्षीण होता गया। पांचवा, कठोर वर्ण व्यवस्था। समाज चार वर्गों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को धार्मिक कार्य और शिक्षा देने का दायित्व सौंपा गया था। क्षत्रिय युद्ध और शासन करने का कार्य करते थे। वैश्य कृषि, व्यापार और पशुपालन करता था। शूद्र वर्ग इन तीनों वर्गों की सेवा करता था। उसका समाज में सबसे निम्न स्थान था। शूद्र वर्ग को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, इसलिए एक ही परिवार के सदस्यों में से एक विद्वान होने के कारण ब्राह्मण कहलाया और दूसरा सदस्य व्यापार कार्य करने से वैश्य कहलाया। लेकिन कालांतर में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया। ब्राह्मणों के प्रभुत्व और श्रेष्ठता का विरोध क्षत्रिय वर्ग ने किया, जिससे ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। राष्ट्र की सुरक्षा और शासन व्यवस्था का भार क्षत्रिय के कंधों पर था, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए क्षत्रिय भी अपने को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मानने लगे। ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष ने धार्मिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी दोनों ही क्षत्रिय थे और उन्होंने समाज में स्थापित वर्ण व्यवस्था का तीव्र विरोध किया था। छठवां, ब्राह्मणों का प्रभुत्व। डॉक्टर विंसेंट स्मिथ के शब्दों में, ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य उच्च वर्गों के पढ़े लिखे व्यक्तियों ने ब्राह्मणों के विद्या तथा मोक्ष के द्वार की कुंजी रखने के एकाधिकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ब्राह्मणों की विचारधारा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। वे अपने कार्य से विमुख होने लगे, सांसारिकता में उनकी रुचि बढ़ने लगी थी। इसके बाद भी उन्हें समाज में विशेषाधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, इसलिए समाज के चिंतनशील व्यक्तियों ने ब्राह्मणों का तीव्र विरोध किया। सातवां, कठिन धार्मिक साहित्य। वैदिक साहित्य वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, रामायण, महाभारत सभी संस्कृत भाषा में लिखे थे, जो सामान्य जनता की भाषा न होने के कारण समझ से परे थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जन सामान्य की भाषा संस्कृत नहीं थी, इसलिए उन्हें धार्मिक साहित्य को पढ़ने और समझने में कठिनाई होती थी। संस्कृत भाषा के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया हो रही थी और लोग सरल भाषा के प्रयोग के लिए उत्सुक थे। आठवां, दार्शनिकों का जन्म। छठी शती ईसा पूर्व समाज में उत्पन्न धार्मिक और सामाजिक असंतोष ने नवीन विचारों को जन्म दिया। चिंतनशील व्यक्ति एक ऐसे ज्ञान की खोज के लिए प्रवृत्त हुए जो सरल, सुबोध और ग्रहणशील हो। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने भी महत्वपूर्ण सुधार किए और समाज को नई दिशा प्रदान की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करके एक नवीन धर्म प्रारंभ किया, जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं। उन्होंने कर्मवाद का सिद्धांत दिया। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी था, जिसे भिक्षु और गृहस्थ जीवन अपनाने वाले व्यक्ति दोनों ही सरलता से अपना सकते थे। नौवां, चतुर्दिक हलचल। समाज में उत्पन्न असंतोष के फलस्वरूप नवीन धर्म का सूत्रपात बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में हुआ। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने वेदों में अविश्वास, अवतारवाद, कर्मकांड, यज्ञों में पशु बलि का तीव्र विरोध किया तथा अपने तर्कों के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रसार किया। परिणामतः असंतुष्ट जन साधारण वर्ग ने उत्साह के साथ नवीन धार्मिक दर्शन का स्वागत किया, उसे समझा और स्वीकार किया। दसवां, चिंतन की स्वतंत्रता। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कपिलवस्तु और वैशाली जैसे अनेक राज्यों में गणराज्य स्थापित थे। गणराज्यों में राजनैतिक क्षेत्र में विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता थी। लोग अलग अलग समस्याओं पर बहस करते और अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करते थे। यह स्वतंत्र विचारधारा राजनैतिक क्षेत्र के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र को भी प्रभावित किए बिना न रह सकी और नए धर्म की उत्पत्ति का कारण बनी।
अरपा रेडियो.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।